मोजिज़ नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो एंटीबायोटिक के ऊपर है, उसके इसका इस्तेमाल क्या है, ख़ुद वो है क्या चीज़, और क्यों उसका ज़्यादा इस्तेमाल, यानी किस हद तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तमाम बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवाल हमने जो है अपनी बातों में अपने मोजिज़ नाज़रीन के भी शामिल कर लिए हैं, और बाद में और सवालात जो आएंगे वो हमको रुबाब जो है बताती रहेंगी और हम अपने मेहमान से पूछते रहेंगे। इस वक्त हमारी मेहमान जो है वो स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुकी हैं, डॉक्टर फ़ायज़ा मुमताज़ साहिबा। तो हम चलते हैं उनकी खिदमत में और सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अलैकुम,
वालेकुम
कैसी हैं आप?
सलाम।
खैरियत से हैं? बहुत
अल्लाह का
बहुत शुक्रिया
शुक्र है,
आप
आप
तशरीफ़
कैसे
लाएँ।
हैं? आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे
जी,
बुलाया।
डॉक्टर साहिबा, एक सबसे पहला सवाल ये है कि एंटीबायोटिक्स है क्या चीज़?
एंटीबायोटिक्स जो हैं, कोई भी इन्फेक्शन अगर हो
जी
जाए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे यही समझा जाता है कि
जी
एंटीबायोटिक्स जो हैं सिर्फ जो बैक्टीरिया है उसके लिए होते हैं, लेकिन वायरस के लिए, फंजाई के लिए,
जी
और हेलमंथ्स एक ग्रुप है उसके लिए, और बैक्टीरियाज के लिए को मारने के लिए बॉडी में जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं।
इसमें ये हमारा ये एक दूसरा सवाल ये था कि आज हमारे माशरे में, आप तो बहरहाल माशरे के अंदर हैं, डॉक्टर भी हैं और आपके पास मरीज़ आते भी होंगे खूब, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी हल्की सी भी कोई परेशानी होती है, डॉक्टर हजरात को भी आसानी होती है, वो लिख देते हैं फौरन पर्चे में। तो कितना इसका इस्तेमाल होना चाहिए और किस हद तक इसका इस्तेमाल मतलब सही है, और किस हद उसके बाद कब उसका इसका इस्तेमाल नुकसान की तरफ हो जाता है?
देखें, जो एंटीबायोटिक्स हैं
जी
इसमें इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है आज का मौजू है, जो कि
जी
एक
जी
बहुत अहम मौजू है।
जी जी
एंटीबायोटिक्स एक हद तक इस्तेमाल करनी चाहिए, और एक अपने डिफरेंशियल जो हम जिसको डायग्नोसिस कहते हैं उसके बाद तजवीज़ में लिखनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन में
जी
जैसे
जी
आप कह रहे हैं। जो वो मरीज़ जो खुद से, मसलन आपको बुखार हो गया, तो मैंने देखा है कि जिसको बुखार भी हो गया वो एंटीबायोटिक लेने लग जाता है,
जी
जिसको जुकाम हो गया वो एंटीबायोटिक
सर
लेने
में
लग
दर्द हो
जाता
गया
है।
है।
सर में दर्द के लिए तो नहीं, लेकिन बहरहाल अगर मसलन जुकाम हो गया या हल्की खांसी होगी उसके लिए एंटीबायोटिक्स अपनी मर्ज़ी से
जी
लेना स्टार्ट कर देते हैं, या मेडिकल स्टोर पे, जैसे पाकिस्तान इंडिया में एक
जी
कॉमन
जी
ट्रेंड है, चले जाते हैं वो, उनको कुछ दे देते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं, जो जो बिल्कुल गलत है। मतलब इस तरह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है मरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है, जो एक बहुत इवन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है
जी जी
एक चीज़ है, एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस वो आपकी जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो जब आप सही तौर पे भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो काम नहीं करती है। मतलब आज
जी
का जो मौजू है उसकी अहमियत यह है कि जब अगर आप उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक्स का, उसके बाद आपकी जिस्म के अंदर एक प्रोसेस डेवलप हो जाता है जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं।
जी
उसके बाद क्या होता है कि जब आप ज़रूरी भी होता है आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, तो वो अपना असर नहीं करती हैं।
खाली एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती है, दूसरी दवाएं भी असर करना
नहीं
छोड़
नहीं
देती हैं।
नहीं एंटीबायोटिक्स नहीं, मसलन
जी
एंटीबायोटिक्स हैं उनकी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं।
जी जी
एक एक पहली क्लास है, एक दूसरी है, एक तीसरी है, एक चौथी है, ठीक है।
जी जी
जहाँ पे हम लोगों ने उसकी पहली क्लास में से कुछ अद्वियात का चुनाव करके मरीज़ को देना है, अगर आप पहली की बजाय जो डॉक्टर हजरात
जी
तीसरी क्लास में से मरीज़ को दवाई दे देंगे, ताकि क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में यूजली ये होता है कि डॉक्टर वही ही अच्छा है जिसकी पहली दवाई
पहली
खाएं तो
पहली खुराक
आराम
में
आ
अच्छा
जाए,
हो जाए आदमी।
ऐसे ही है, बेशक वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े
जी
हों, हर कोई यही समझता है। तो ये जो इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है ये बहुत ख़तरनाक है। इससे क्या होता है कि जब आप पहली क्लास की बजाय तीसरी क्लास की दवाई जो है वो मरीज़ को लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, जब आपको असल में आपको वो ज़रूरत पड़ेगी उस एंटीबायोटिक की जो थर्ड क्लास की है,
जो
तो
थर्ड
वो
स्टेज
अपना
में।
इफ़ेक्ट नहीं करेगी,
जी
क्योंकि
जी
ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस
यानी
पैदा हो
आपने
चुकी होती
फर्स्ट
है,
स्टेज पे ही थर्ड स्टेज
थर्ड
की
स्टेज की दे दी
दवा यूज कर
आपने,
ली
तो
आपने
वो जब
ऑलरेडी।
आपको थर्ड स्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, और
जी
ये एक एक दफ़ा देने से नहीं होता, मतलब रिपीटेडली, जैसे एक हैबिट बन गई हुई है
जी
हमारी के हमने अगर, या तो मरीज़ खुद से दवाई ले लेता है मेडिकल स्टोर पे जाके, या फिर डॉक्टर्स ही हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी जो जब आपको ज़रूरत है उस दवाई की तब वो असर करना छोड़ देती है। तो ये जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो पहली बात तो ये कि खुद से एंटीबायोटिक नहीं खानी है कोई भी
ना खुद से
मसलन,
खानी चाहिए और ना आम तौर से मेडिकल स्टोर पे जो बने हुए डॉक्टर हैं उनके
उनसे
जरिए दी
लेनी
गई दवा भी
चाहिए,
नहीं खाना
बिल्कुल
चाहिए
ऐसी है इस
जब तक
तरह
डॉक्टर आपको लिखे ना।
डॉक्टर।
आपने जैसे भी ये कहा यहाँ पर इसी सवाल की वजह से मैं बीच में कूदा आपके उसमें, ये कि डॉक्टर्स ही अब दवाएं ऐसी लिखने लगी हैं लिखने लगे हैं या लिखने लगी आप बैठी हैं इसलिए मैंने लिखने लगी कहा, तो उसका कितना असर पड़ेगा मतलब इसके ऊपर, या उनको नहीं लिखना चाहिए क्या वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं या
नहीं
उन
डॉक्टर्स तो इस चीज़ को जानते हैं,
जी
देख जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो नहीं दिखते हैं इस तरह से मेडिसिन के, जहाँ पे आपको यानी फर्स्ट क्लास की ज़रूरत है वहाँ पे आप थर्ड की दिख दें या फोर्थ की
जी
दिख दें, यूजली ऐसे नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जो पेशेंट्स का डिमांड है पाकिस्तान या इंडिया में
जी
वो होती ही है कि अच्छा डॉक्टर वो है जो जिसकी पहली दवाई से आराम आ जाए दूसरी दवाई से आराम आ जाए, तो
जी
ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स ने भी अपना सिस्टम चलाया हुआ है।
बिल्कुल
तो
सही
बात ये कि गैर ज़रूरी इस्तेमाल में ये चीज़ भी आ जाती कि आपने जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका एक स्पेक्ट्रम होता है,
जी
स्पेक्ट्रम का मतलब कि अगर आपको कौन सी किस्म का इन्फेक्शन है जब आपने कौन सी एंटीबायोटिक खानी है, बहुत सी क्लासेस एंटीबायोटिक्स की, मोर देन 10 क्लासेस हैं
जी
जो डिफरेंट इन्फेक्शंस में दी जाती हैं। मसलन अगर सिर्फ हम बैक्टीरिया को यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें जो एंटीबैक्टीरियल्स जिनको हम कहते हैं, तो इतनी टाइप के तो बैक्टीरियाज ही हैं, तो हर एक जो एंटीबायोटिक की क्लास है वो एक स्पेशल बैक्टीरिया के लिए बनी हुई है।
जी
ये मसलन अगर आप खुद से आप घर पे आपके कोई एंटीबायोटिक पड़ी है, आपको खांसी हुई है और खांसी आपको बैक्टीरिया, ज़रूरी नहीं है कि हर एक खांसी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हुई है,
जी
आपको एलर्जी भी हो सकती है, आपको हो सकता है कि आप बाहर जाते हैं आपको डस्ट एलर्जी है, धुआं है, गाड़ियां हैं,
जी
पोल्यूशन है, उसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई है, तो आपने उस कंडीशन में एंटीबायोटिक नहीं खानी है। लेकिन कॉमन ट्रेंड ये है कि कोई थोड़ी सी खांसी होगी तो एंटीबायोटिक खा लें एंटीबैक्टीरियल, थोड़ा सा जुकाम हो गया तो एंटीबैक्टीरियल खा लें। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपको ओरिजिनली आपके जिस्म को ज़रूरत पड़ेगी कि आप वो दवाई खाएं तो वो असर नहीं करेगी।
असर नहीं करेगी।
दो सवाल पूछना चाहूंगी अलमदार मैं डॉक्टर
जी
साहिबा से यहाँ
बिल्कुल
पर। एक तो ये कि एंटीबायोटिक्स जब दी जाती हैं तो कभी कहा जाता है कि 6 घंटे 8 घंटे
जी
टाइम जो है वो डिफर किया जाता है नेक्स्ट डोज के लिए, तो क्या इसमें जो है खुद एंटीबायोटिक में यानी इसकी मुख्तलिफ अकसाम है या बीमारी जो है उस वजह से इसको कहा जाता है? और दूसरा सवाल ये है कि जनाब एंटीबायोटिक्स कितने दिन तक जो है वो महफूज रहता है? दूसरे दवाइयों की तरह जिस तरह 1 महीने तक हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं उनसे, लेकिन एंटीबायोटिक की जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितना है इसका?
जी बताइए
तो जो पहला क्वेश्चन है
जी
इनका, उसका ये कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम उसको कहते हैं कि
जी
जितने टाइम में दवाई ने अपना असर जिस्म के अंदर पैदा करना है, तो उस लिहाज से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है
जी
मेडिसिन का या एंटीबायोटिक का हो या कोई भी और दवाई हो, हर एक का अपना एक मखसूस होता है। कुछ मसलन 6 घंटे के बाद अपना असर पैदा करती हैं, कुछ 8 के बाद, कुछ 12 के बाद, इसीलिए हमें कुछ जो अद्वियात हैं वो 6 घंटे के बाद खानी, मसलन एक दिन में 3 दफ़ा खानी है
जी सुबह
कोई,
दोपहर शाम हो गए
हाँ, और कोई जो है हमें BID मतलब 2 दफ़ा दिन में खानी है,
जी जी
कोई जो है एक ही दफ़ा खानी है।
जी
तो इस पे भी इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है कि मसलन अगर आप एक जो एंटीबायोटिक है उसकी
जी
जो जो अगर आप देखें तो पीछे उसकी स्ट्रेंथ लिखी होती है जो मिलीग्राम्स में लिखी
जी जी
होती है,
जी
जैसे 500 500 मिलीग्राम है या 1000 मिलीग्राम है, तो अगर आपको एक दवाई 500 मिलीग्राम जो है वो 2 दफ़ा दिन में खानी है तो जो 1000 मिलीग्राम है वो आप एक
एक
दफ़ा
ही करना
खाएंगे।
है जी
तो इस तरह से जो है ये इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और जो उसकी स्ट्रेंथ है, मसलन वो 500 मिलीग्राम है या 1000 मिलीग्राम है या 2000 मिलीग्राम है, तो उसकी बेस पे भी आप या तो वो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको डॉक्टर लिख के देता है तो वो आपको कहेगा आपने सुबह के वक्त खानी है या रात को खानी है, एक दफ़ा खानी है। इसी तरह अगर उसकी स्ट्रेंथ 1000 की बजाय 500 है तो आपने
जी
वो दिन में 2 दफ़ा खानी है, तो
वो तो
ये जो
डॉक्टर मैं
है
समझता हूँ कि बीमारी को तशखीस देने के बाद कि किस लेवल की आपकी बीमारी है
जी जी
उसी हिसाब से वो दवा देता है।
स्ट्रेंथ जो है और
जी
जो कितनी दफ़ा खानी है 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद 12 घंटे बाद, ये उस पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी की कितनी इंटेंसिटी हो गई है,
जी
यानी कि आपको किस हद तक इन्फेक्शन हो चुका
किस
है,
जी
तो ये सारा कुछ जो है
डिपेंड
बीमारी
करता
पे
है
भी डिपेंड करता है और दवाई की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे के बाद खानी है।
और दूसरा सवाल जो था रुबाब आपका
टाइम ड्यूरेशन के हवाले से था कि एंटीबायोटिक की जो लाइफ टाइम जो ड्यूरेशन होती है वो कितना है इसका?
एंटीबायोटिक का जो लाइफ टाइम है वो भी जो मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स की, तो कुछ जो है मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो स्टोरेज कंडीशन होती है वो रेफ्रिजरेटर होता है. मसलन हमने उनको बिलो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 23, कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं मसलन जो आप यूजली खांसी वगैरह के लिए खाते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या फिर जो पेनिसिलिन्स हैं, ये सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह पेनिसिलिन की क्लासेस हैं, ये आप रूम टेम्परेचर पे भी, अगर तो गोली है टेबलेट फॉर्म है या कैप्सूल फॉर्म है, आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं.
और इसकी सिरप है अगर तो
जी,
अगर सिरप है,
अगर सिरप है तो उसका मोस्टली ये होता है क्योंकि वो सस्पेंशन की फॉर्म में होता है तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखें. मोस्टली आप अगर देखें यानी आप एक बाहर उसकी डब्बी होती है सिरप की, उसके ऊपर उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर एक जुबान में लिखा होता है कि आपने इसको इतने दर्जा हरारत पे जो है उस पे रखना है, मसलन 20 से कम पे रखना है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, ये उसके ऊपर मेंशन होता है. और ये एक फिक्स नहीं है कि मसलन एक अगर एंटीबायोटिक्स हैं तो हर एक एंटीबायोटिक को एक ही टेम्परेचर पे रखना है
उसका भी
या
अलग
फिर
अलग
एक ही मसलन उसका शेल्फ लाइफ, या फिर जैसे रुबाब ने पूछा कि इसको कितनी, उसको हम शेल्फ लाइफ कहते हैं या फिर के कितना उसकी एक्सपायरेशन होती है, तो वो हर एक जो एंटीबायोटिक की क्लास है, हर एक जो उसका जेनेरिक है उसके हिसाब से डिफर करती है, मुख्तलिफ होती है. वो जो उसका बाहर का पैक है, अगर बेशक वो गोली की डब्बी है जो बाहर गत्ते की डब्बी होती है या फिर सिरप है, उसके बाहर मेंशन होता है उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी जब वो प्रोड्यूस हुई मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका साथ में स्टोरेज कंडीशन कि उसको किस दर्जा हरारत पे महफूज करना है, ये सारा कुछ मेंशन होता है और हर एक दवाई के लिए मुख्तलिफ होता है.
सवाल आया है हामला खवातीन और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, इस पर रोशनी डालिए.
जी, इन्होंने जो पूछा,
हामला खवातीन जो हैं उनके लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं ऑलमोस्ट सारी एंटीबायोटिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं. आप कोई भी सिर्फ वो एंटीबायोटिक हामला खवातीन खा सकती हैं जो डॉक्टर ने उनको कहा है. अगर कोई बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, मसलन खांसी हो गई है या फिर वो इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत से इन्फेक्शन है सिर्फ खांसी नहीं है, तो उसमें जो सिर्फ रिकमेंडेड एक लिस्ट है जो हमारी एक ड्रग लॉ है उसके अंदर लिस्ट है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपने प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल करना है एंटीबायोटिक्स का. सिर्फ डॉक्टर हजरात भी वही लिखते हैं उनमें से चूज करके कि उनका इन्फेक्शन के मुताबिक कौन सी उनको देनी है. उसके अलावा खुद से तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते. अगर आप बाहर की डब्बी देखें किसी भी दवाई की, उसके हर एक के बाहर लिखा होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये जो है खुद से कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, कभी भी नहीं लेनी है अगर जो हामला खवातीन. बाकी डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इतनी वाइड, इतनी ज़्यादा बड़ी क्लास है अद्वियात की कि मैं हर एक का जो इफेक्ट है वो वन बाय वन क्लास के हिसाब से है. ओवरऑल बस बात ये कि प्रेगनेंसी में समझे कि हर एक एंटीबायोटिक जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अनटिल और अनलेस के जो डॉक्टर है उसको पता है कि आपका इन्फेक्शन क्या है और उसके मुताबिक कौन सी जो एंटीबायोटिक है वो ड्रग लॉ के मुताबिक कि उस लिस्ट के मुताबिक हम इसको दे सकते हैं. दैट्स इट.
डॉक्टर साहब, इसमें यही एक सवाल जो आपसे ज़रूरी है और ख़ासकर इस सवाल के जवाब को हमारे मौजूद नाज़रीन जानना भी चाहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं.
देखिए, जो साइड इफ़ेक्ट है, जब आपने एक एक एंटीबायोटिक्स एक बहुत ही ज़रूरी क्लास है अद्वियात की जो हमें कॉमनली हर किसी को ज़रूरत पड़ती है उसकी, खासकर जो कॉमन डेज कॉमन इन्फेक्शंस हैं. उसके अलावा सीवियर इन्फेक्शंस भी हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं. बेशक वो डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कौन सा, वो बैक्टीरिया का है, फंजाई का है, वायरस का है या फिर हेलमेंट्स का है. तो जो क्योंकि यूजली जो है हम बैक्टीरिया से हमारा कॉन्टेक्ट होता है और वायरस से होता है डेली लाइफ में, तो इसमें जो सबसे बैड एडवर्स इफेक्ट है वो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको बताया. उससे क्या होता है कि जब आप गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वाला बैक्टीरिया, वो फंजाई, वो वायरस नहीं है जिसकी आपने वो एंटीबायोटिक खा ली, वो दवाई खा ली. तो तो वो क्या करेगी, वो अपना काम तो नहीं, उसका तो कोई काम नहीं है जिस्म के अंदर, क्योंकि वो वाला तो आपके अंदर इन्फेक्शन ही नहीं है जिसके लिए आपने वो खा ली। अब वो क्या करेगी कि वो आपके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि जब आप नेक्स्ट टाइम वही दवाई खाएंगे किसी खास उस इन्फेक्शन के लिए जिसकी जरूरत है आपकी बॉडी को, तो वो अपना, क्योंकि वो बॉडी में, ये ऐसे है जैसे आप वैक्सीनेशन कर लें आसान जुबान में और फिर आपको कोई वो बीमारी ना हो, ये उसका उल्टा हो जाता है कि मसलन ये जो एंटीबायोटिक है ये आपकी बॉडी के अंदर जाके ऐसे चेंज कर लेती है, कर देती है उसके अंदर कि आपके जो बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंट हो जाता है अपना वो असर, यानी वो दवाई जब आप नेक्स्ट टाइम खाएंगे गैर जरूरी तौर पे आप खाते रहे वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी जिस्म में उस एंटीबॉडी की जरूरत नहीं थी। मसलन आपने पहली क्लास खानी थी आप तीसरी खा रहे थे, अब जब आप तीसरी की जब जरूरत होगी आपको जब वो खाएंगे तो वो अपना असर नहीं करेगी, ये रेजिस्टेंस होती है। तो सबसे जो बड़ा ही साइड इफेक्ट कह लें या फिर एक इफेक्ट बैड इफेक्ट कह लें वो तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। दूसरी बात ये कि जब आप के बॉडी के अंदर खा भी रहे हैं वो और आपके पास ऑलरेडी उसकी रेजिस्टेंस हो चुकी है तो आपको उसका असर देर के बाद आएगा, आपको ज़्यादा दिन खानी पड़ेगी। मसलन आपको अगर इनिशियली आप खा रहे हैं आपकी बॉडी रेजिस्टेंट नहीं है, आपको डॉक्टर कहता है कि 3 दिन खा लें, 5 दिन खा लें, 7 दिन खा लें आपके इन्फेक्शन की बेस पे।
डॉक्टर साहब अभी आपने इसके बताया कि बैड जो साइड इफेक्ट हैं या बैड इफेक्ट हैं वो ये हैं, तो एक तो ये हो गया पहली चीज़ तो ये हमको खाने ही नहीं चाहिए ज़बरदस्ती और बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से तो बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमने खा लिया और साइड इफ़ेक्ट हो गए उसके बैड इफ़ेक्ट हो गए तो उसको बचें, उससे बचें कैसे?
इसका जो बचाव का तरीक़ाकार ये है कि जब आपकी को ज़रूरत है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, आप तभी खाएं। आप मेडिकल स्टोर पे आपको फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, आपने एंटीबायोटिक नहीं खानी क्योंकि वो वायरल होता है, 7 दिन के मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर वो खुद ही वो वाला वायरस आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो इस तरह से आपने कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो खुद से नहीं खानी है, बस डॉक्टर के पास चले जाएं, सिंपल वो जो लिख दें आपको वो आप खा लें, इसका ये है। और अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो भी गया है उसका, जो वो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं जैसे आप पेंसिलिन वगैरह खाते हैं, या फिर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत सीवियर भी हो जाते हैं, जैसे आपके ब्लड सेल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और ब्लड फॉर्मेशन जो है वो न्यू जो ब्लड है खून है वो नहीं बनता है, तो ये सारे जितने भी इसके एडवर्स इवेंट्स हैं ये फिर आपके जो कोई भी नज़दीकी डॉक्टर हो बस इमीडिएटली फ़ौरन से आप उनके पास चले जाएँ तो वही कर सकते हैं। मतलब आप खुद से इसका जो है इलाज नहीं कर सकते, अगर आपको कोई भी आपने एंटीबॉडी खा ली आपको कोई एलर्जी हो गई है या एलर्जिक रिएक्शन हो गया या फिर आपको अनकॉन्शियसनेस हो रही है, रंग पीला पड़ गया, तो आप फौरन से अपने फिजिशियन के पास चले जाएं।
तो इसका मतलब ये है कि इसके जो साइड इफेक्ट हैं उसका कोई तोड़ हमको नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कोई ज्यादा तोड़ नहीं है उसका?
नहीं कोई है, देखें जो
यानी जैसे आपने कहा खून में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड में प्रॉब्लम हो सकती है,
वो जो आप एडवर्स इसका ये कह रहे हैं वो उसकी ओवरडोज की वजह से होता है, जो आप खुद से गैर जरूरी जो इस्तेमाल है उससे मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, यानी कि इफेक्टिव नहीं रहती है दवाई आप, और जब आपको जरूरत होती है उसका असर नहीं पैदा होगा। लेकिन जो ओवरडोज के एडवर्स इवेंट्स हैं एंटीबायोटिक्स के उसके गलत असरात हैं वो बहुत सीवियर होते हैं, उसके लिए आपको फौरन से जो है आपका जो करीबी मौलिज है या फिजिशियन है उनके पास जाना होता है। यानी एक ओवरडोज जरूरत से ज्यादा खाना, मसलन आपने एक दफा खानी थी, आपने एक गोली खानी थी, आपने दो खा ली, दो से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी ने मसलन दिन में एक गोली खानी थी आपने 3 दफा खा ली भूल के, या 3 दफा 2-2 गोली खा ली, तो जाहिर बात है आपको उसका एडवर्स इवेंट आएगा। तो वो जो इस किस्म के जो इसके एडवर्स इवेंट है जब तक अगर वो कोई सीवियर आपको आ रहा है उसका, तो वो तो फिर आप जब जाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मसलन हम एक और दवाई ले लें वो खा लें तो वो ठीक हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाएं।